अब देखें कि इस आयत में जो अल्लाह सुबहाना तआला ने बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किनारों पर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इसका अगर हम थोड़ा सा माइंड मैप बनाएं, अगर बिलफर्ज ये पानी का ग्लास अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको? बेचैनी लग रही है ना, खौफ भी आ रहा है ना, ज़रा सा कपड़ा भी खिसकेगा तो ये पानी नीचे चला जाएगा। बस इसी कैफियत को आप सामने ले आइए कि जो लोग दीन के मामलात में बिल्कुल लीस प्रायोरिटी पर रहते हैं ना, बस थोड़ा ही ठीक है, तो वो हर वक्त बेचैन रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीन की तरफ आने के बावजूद भी, मुसलमान होने के बावजूद भी टेंशन, डिप्रेशन, घबराहट की कैफियत आती हैं, तो उसकी एक अलामत ये है कि आप किनारों पे हैं। आप भी बेचैन होते हैं, देखने वाला भी बेचैन होता है। अब अगर जिस तरह हमें इस ग्लास को देख के खौफ आ रहा है ना कि हाय ये गिर ना जाए, मुझे फील होगा कि मेरा हाथ लग के कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ इधर से उधर हो जाए, इसी तरह अगर इस ग्लास के अंदर थोड़ी सी भी सलाहियत होती तो इसको भी ऐसे ही होता। इसको एक और थोड़ी सी इमेजिनेशन से समझिए कि कभी आप समंदर पे गए हों, पहाड़ों पहाड़ की चोटियों, मैं ये बात करती हूँ जब भी इस आयत की तो मेरे जहन में बचपन का वो एक लाशौर का मंज़र आने लगता है कि समंदर का नीचे किनारा है और उसके बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ है, कोई एक ऐसी जगह है, और वो पहाड़ जो है वो बिल्कुल आगे तक बढ़ा हुआ है, जैसे आपको होता है ना कि नीचे से पानी लग लग के कट चुका होता है पहाड़, और ऊपर एक समझे सिर्फ छज्जा सा बना हुआ है। अब जो बंदा उस पहाड़ पे खड़ा होगा ना, तो उसको बिल्कुल अपने नीचे बल्कि अंदर समंदर दिखेगा। एक दफ़ा किसी मौके पे हम लोग वहाँ थे और नमाज के लिए हमने गाड़ी रोकी, तो ऊपर थे अभी हम के पहले नमाज़ पढ़ते हैं फिर नीचे जाएंगे समंदर के पास। यकीन करें कि वो मंज़र इतना खौफनाक था कि माओ ने अपने बच्चों को पकड़ लिया कि ये कहीं इस किनारे पे ना, हालांकि इतना मज़बूत पत्थर है नीचे, कोई ये थोड़ी कि बच्चे के वज़न से वो पहाड़ गिर जाएगा और टूटेगा और बच्चा समंदर में जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ गाड़ियाँ भी ना खड़ी करें, हो सकता है गाड़ी के बोझ से ये पत्थर का जो एक छज्जा सा बना हुआ है यही समंदर में ना गिर जाए। तो हम सब सोच सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला हमें कितनी महफूज ज़िंदगी देना चाहते हैं। ये है वो ज़िंदगी जो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जितना आप दीन के अंदर आते जाएंगे इत्मीनान आएगा, तभी तो अल्लाह ताला ने यहाँ इत्मीनान का लफ्ज़ भी बोला, फ़ैन असाबहु खैरु, खैर पहुँची, नफ़ा मिला, अपनी पसंद के मामलात थे, उस दीन ने उसकी दुनिया पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, उस दीन ने उससे कोई कुर्बानी नहीं मांगी, उस दीन का कोई असर उसके लाइफ स्टाइल पर नहीं आया, उसके रस्म व रिवाज पर नहीं आया, नितमान भी बड़ा खुश रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हाँ जी हम जद्दी बुश्ती मुसलमान हैं और हमारे अंदर तो ये हुआ वो हुआ, लेकिन वही नसाबत हु फितना तू, जहाँ आती है कोई आजमाइश। एक छोटा सा जुमला लिख लें हम सब के लिए ही है कि जब भी कभी ज़िंदगी में दीन के नाम पे कोई आजमाइश आए, आती है ना हम पे, कभी खुशियों की सूरत में, कभी गमियों की सूरत में, कभी मौसम की शिद्दतों की सूरत में, कभी रिश्तेदारों की नाराज़गी की सूरत में, कभी अपनों की बेरुखी की सूरत में, याद रखिए कि वो आजमाइश हमारे अगले दर्जे में जाने का एक सिंबल होती है। अपने लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि अगले दर्जे में इंसान इम्तिहान देने के बाद ही जाता है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो वो 8वीं जमात पास ना करे और 9वीं में चला जाए। आप इमेजिन करें कि 8th क्लास के जो पेपर्स थे किसको अच्छे लगे होंगे, नहीं दिल चाहेगा देने को, लेकिन उस पेपर, उस आजमाइश, उस इम्तिहान का नतीजा क्या निकला कि आप लोग 9वीं क्लास यानी 9वें दर्जे पे पहुंच गए। नतीजा क्या हुआ कि आप अपने आप को अल्लाह ताला के करीब महसूस करते हैं और उसके वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मदद हो जाती है अल्लाह ताला की। तो जब कभी कोई आजमाइश है, जब कोई मुश्किल आए दीन की, फ़ौरन चेक करें कि इसके बाद क्या पड़ा हुआ है। जैसे बंदे के दिल में हकीकी ईमान आता है ना, तो वो एड़ियाँ उछाल उछाल के देखते हैं। यकीन करें कि जब फिर अल्लाह ताला के साथ बंदे का ताल्लुक जुड़ता है ना, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं मैं कर रही, बंदे मोमिन की सारी ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला तो सूरत मुल्क में फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तो ज़िंदगी और मौत का निज़ाम बनाया ही इस लिए है कि पता तो चले तुम रिएक्ट कैसे करते हो। हम सब के ऊपर कैमरे फिट हैं, हम सब की वीडियोस बन रही हैं, हम सब के क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड होकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ गाड़ी चलाते हुए आप देख लें कि एक रूल नहीं ब्रेक करते, कहते हैं यहाँ कैमरा लगा हुआ है। इसी तरह एक मोमिन का हाल भी यही होता है कि वो ऐसी तमाम चीज़ों के अंदर अपने रब से ताल्लुक़ नहीं तोड़ता, और ज़रा सा उसका दिल किसी दूसरी चीज़ में लगने लगे तो पलटने लगता है। फिर आप देखिए, खसीरत दुनिया वल आखिरा, मिला क्या? इंसान किनारों पे क्यों रहता है? ताकि दोनों के फ़ायदे लूँ, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दोनों तरफ के फ़ायदे लें, लोटे की कैफियत। जिधर दिल चाहा, जिधर हालात अच्छे लगे, वहाँ घूम जाएंगे, लेकिन ऐसे शख्स को मिलता कुछ भी नहीं। आप इसको अपने हिसाब से कई मिसालों से समझ सकते हैं। बंदा दोगली पॉलिसी अख्तियार कर ले, दो सियासी पार्टियों को अपनी हमदर्दियाँ जतलाए, मैं आपके भी साथ हूँ, दूसरी तरफ जाए कि मैं आपके भी साथ हूँ। सोच क्या रहा है कि दोनों से बेनिफिट ले लूँगा, जो गवर्नमेंट आ गई हुकूमत में वो मुझे वजारत में ले आएगी, दूसरी तरफ भी ले आएगी। होगा क्या प्रैक्टिकली? खसीरत दुनिया वाला आखिरा। सिर्फ ख़ानदानी सियासत में ही आप देख लें, जो बंदा डिप्लोमेटिक करेक्टर बन जाता है ना, सामने आया तो कुछ कहा, पीछे गया दूसरी जगह क्या, तो हम कहते हैं तुफ है उस पर, उसकी तो बात ही ना करो, लानत है उस पर, वो मेरे सामने यूं बातें करती है और उसके बाहर जाके ये बातें करती है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये जुमला लिख लें इस आयत पे, कहीं का नहीं रहता। ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई वाली कैफियत है, कज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और यही है बहुत बड़ा खसारा। बैंकरप्सी असल में देखनी हो तो ये देखो, तुमने तो लोगों को बैंकरप्ट होते देखा होगा कि उनके मिलियंस के घर चले गए, लाखों डॉलर्स के घर बैंक के पास चले गए, वो भी कोई खसारा है? घर ना हुआ तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जिसकी दुनिया भी गई आखिरत भी गई, वो तो खसीरा से खुसरान, फौलान का वजन है, सुपरलेटिव डिग्री, इसम तफजील, बहुत बड़ा खसारा ये है। और ऐसे शख्स की फिर एक दुनिया के अंदर कैफियत क्या है? यद उमिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यन्फउहु, वो उनको पुकारता है, उनकी इबादत करता है, उनसे दुआएं मांगता है जिनका नुकसान उनके नफ़े से ज़्यादा है। चाहे कोई बुत है, चाहे कब्र में कोई सोया हुआ बुजुर्ग है, कोई दुनिया से जा चुका इंसान है, ये जब भी किसी मुश्किल में आता है तो कहता है कि मेरी नैया पार लगा दे, या अब्दुल कादर जिलानी हाथ मेरा थाम ले, या गौसे पाक तेरे ही दर से लेके जाना है, या मुश्किल कुशा आज लेके जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी जब ऐसे शख्स की मत मारी जाती है फिर भी पलटता है तो गंदगी पे पलटता है। आप देखिए, जो गंदगी के ढेर पे खड़ा होगा उसको चक्कर आएगा तो गिरेगा तो गंदगी पे ही ना। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल भी आती है जिससे अल्लाह ताला उसको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, फिर भी जाता है तो किसी बुज़ुर्ग और किसी और जगह जाके अपनी नेकी को ज़ाया करके आता है। आज देखिए, जितनी हाज़िरी कब्रों पे है, क्या उतनी हाज़िरी मस्जिदों में भी है? आज मस्जिदें वीरान दिखती हैं हमें और कब्रिस्तान आबाद दिखते हैं, आस्थानों पे लोगों की कतारें लगी हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो खुद ब खुद अपने आप को दूसरी तरफ करते हैं। और आप देखिए कि लोगों का ईमान लूटने के लिए कई ऐसी दरगाहों पे लोगों को लूटा जाता है। आपने सुना होगा कि जुआरियों ने जब किसी को जुए की लत डालनी होती है ना, तो पहले वो उनको जिताते हैं, जानबूझ के पीछे पीछे रहते हैं ताकि वो फिसलता जाए, और जब उसके अंदर गिरेगा तो आएगा। मुझे किसी ने एक ईमेल में छोटा सा एक किसी का आर्टिकल भेजा कि कोई राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उसका टॉपिक क्या था कि मैं हेल में गया और वहाँ से वापस आया। अब आप इमेजिन करें, कोई आपसे कहे कि मैं जहन्नुम तक गया और वहाँ से पलट आया, तो जहन में क्या कुछ आता है ना, किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन वो एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने लिखा हुआ कि मैं लॉस वेगास, आप में से नाम भी सुना होगा, नेवाडा, मतलब एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ लोग सिर्फ छुट्टियाँ गुजारने के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, डिज्नीलैंड और दिस एंड दैट, अमेरिका की एक जगह है। कहते हैं कि मैंने वहाँ किसी आर्टिकल की तैयारी के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, और मैंने वहाँ जो हेल देखी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ से पलट आया हूँ। कहते हैं मैंने जुआरियों को, यानी जो भी वहाँ खेल रहे होते हैं चेस वगैरह, उनको अपने घरों के रन की मनी सट्टे पे लगाते हुए देखा है, अपने बच्चों को सट्टे पे लगाते देखा है, और मैंने देखा है कि वहाँ जो खेल कूद रहे हैं वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे जहन्नुम बनाए हुए हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि मैं वहाँ से वापस आया हूँ। याद रखें कि शिर्क का गढ़ हो, गुनाहों की जगह हो, हर चीज़ इस तरह इंसान को पहले अपनी तरफ माइल करती है, जब आप उसके अंदर फंस जाते हैं ना, तो फिर वो आपका खून निचोड़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी तमाम चीज़ों से महफूज रख दे। कहा यदू लमन दर रूहू अकरबु मिन नफ़ेही, वो पूछता है इसे जिसका नुकसान ज़्यादा करीब है इसके नफ़े से। इन आयात पे एक शख्स का वाक्या भी आता है। तफसीर में मिलता है कि एक यहूदी था, मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल किया। इत्तफाक से देखिए कि जूँ ही उसने इस्लाम कबूल किया, उसकी बेनाई चली गई। फिर इसका उसके बाद ज़बरदस्त माली नुकसान हो गया। फिर तीसरा गम क्या पड़ा कि उसका बेटा था वो मर गया। जब ये तीन तकलीफ़ें आई उस पर, फ़ैनसाबत हो फितना तुन, आजमाइश आई, तो कहने लगा कि ये सब इस्लाम की नहुसत से हुआ है। नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा अक्लनी, जो बैत मैंने आपके हाथ पर इस्लाम के नाम पे की थी, मुझे उससे आज़ाद कर दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बैत वापस नहीं ली जाती। कहने लगा मुझे तो आपके दीन से कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना मुझे इसमें कोई खूबी मिली। मैं अंधा हो गया, मेरा माल बर्बाद हो गया, मेरा बेटा मर गया। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया ऐ शख्स, इस्लाम इंसान को गलाता है, मेल्ट करता है और साफ़ करता है, जिस तरह आग सोने चांदी की मैल को साफ़ करती है। कि इस्लाम की तरफ आके तो देखो, फिर देखना तुम पे जो तकलीफ़ें आएंगी, अल्लाह ने पिछली ज़िंदगी के गुनाहों को ऐसे ही तो नहीं माफ़ कर दिया कि अल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, कि इस्लाम माफ़ कर देते ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को। अब इस वाक़े को आप सामने रखें, तो जब हम अल्लाह के दीन की तरफ आते हैं, पीछे भी आपको हज़रत अय्यूब के तनाजर में ये बात बताई थी, कभी मत ये सोचिए कि आप अगर इबादत करने लग गए, आप कुरान पढ़ने लग गए हैं, आप इस्लाम की तरफ आ गए हैं, आपने बुरी रस्म व रिवाज से तौबा कर ली है, तो अब आपके ऊपर सोने की टिड्डियाँ ही बरसेंगी। ये बरसती हैं कई साल के सब्र के बाद, जैसे अय्यूब पे कई साल के सब्र के बाद बरसी थी। हम सोचते हैं हम आज यहाँ साइन करके जाएंगे अल्लाह के नाम पे, और देखना कल से हम पे पत्तियाँ और फूल बरसेंगे। अल्लाह बरसा दे ये उसकी बात है, शुरू में नहीं बरसती, पहले अपना मनवाना पड़ता है। इस्लाम गलाता है, खोट ख़त्म करता है, पक्का करता है। एक लड़की को मैं जानती हूँ, वो अच्छी खासी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। एक जगह कहीं कोर्स शुरू हुआ, उसने कहा कि मैं कोर्स करूँगी। आई, उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि मैं उधर से बिल्कुल ऑफ लेती हूँ और मैं अपने आप को डिवोट करती हूँ, मैं फुल टाइम टीचर के साथ रहूँगी। इस फैसले के चंद दिन के बाद उसका ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, मुँह पे चोटें इधर उधर। अब गम क्या होता है कि पलट जाएगा, लेकिन वो कहने लगी मुझे तो अब अपना और ज़्यादा ईमान लगता है कि जिस वक्त इतना ज़बरदस्त हादसा हो रहा था, उस वक्त भी कोई तकलीफ़ नहीं थी। गाड़ी देख के कोई मान नहीं सकता, कोई बचा भी होगा, लेकिन मेरे दिल पे ज़रा सा चोट भी नहीं आई। ये इस्लाम पहचाननी है। हम में से हर एक अगर वाकई अपना मुखलिस है, तो आसानियों को छोड़कर, सहूलतों को छोड़कर, मांगी अल्लाह ताला से नफ़े वाला सौदा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोग कोई रूटीन लाइफ गुजारने वाले लोग नहीं होते। जो लोग बाद में चुने जाते हैं, अपने दौर में बाज़ दफ़ा डांटे जाते हैं, धुतकारे जाते हैं। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु वला यनफउहु, ज़ालिका हुवद दलालुल बईद। ये है बड़ी गुमराहियाँ। यदु लमन दर्रुहु अक़रबु मिन नफ़ी, ऐसे लगता है तहों की तहें लग रही हैं इस एक आयत के ऊपर। आप सादा सा केक बना के बैठ जाते हैं ना, फिर उस पर डिफरेंट किस्म की क्रीमें लगती हैं, कई किस्म की उसमें सेटिंग्स होती हैं। इस एक आयत को समझने के लिए ये आखिरी सारी आयतें जमा करके देख लें। अल्लाह ताला इंसान को बताता है कि अगर तुमने जन्नत का रास्ता चुना है, अगर तुमने इस्लाम को हक समझ लिया है ना, अगर तुमने इस कुरान को अब अपनी ज़िंदगी के लिए किताब हिदायत बना लिया है, तो अब इस रास्ते के कांटों को देख कर घबराना नहीं, बल्कि इनको फूलों से भी अजीज़ समझो। ये मंजर तुम्हारे महबूब रब के रास्ते के कांटे नहीं हैं, ये फूल हैं। अगर अल्लाह उसे दीने हक को सर बुलंद करने के लिए सारी दौलत खर्च करने की भी तौफीक दे दे, तो इसको अपनी सआदत समझे, कामयाबी समझे। अल्लाह ताला हर एक को अपने लिए नहीं चुनता। अगर कोई बंदा आज इस्लाम के परचम को हाथ में लेने के लिए चुना गया, तो वो इस पर खुशियाँ मनाए, खौफ रखे कि कहीं मुझसे ये चल ना पड़े। हज़रत हबीब की तरह, किस तरह तख्ते दार की तरफ चल रहे थे और लोग उनके चेहरे पे मुस्कुराहट को देख रहे थे। इस रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, हम मर जाएंगे, जान चली जाएगी, खून खुश्क हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते के गम लगा लगा के हम निढाल हो जाएंगे, क्या हुआ इसके आखिर, दूसरी तरफ क्या दिखेगा। मौत हलाकत नहीं उनके लिए, ऐसे लोगों की मौत तो फना नहीं रहती। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इनको मुर्दा ही ना कहो। इनकी मौत कौम की हयात बन जाती है, इनकी ज़िंदगी जो है एक नई ज़िंदगी बन के आती है। ये तो मौत के एक ऐसे पुल से पार जा रहे हैं जो इनको दूसरी तरफ एक बड़े खूबसूरत बाग में लेके जा रही है। अब इस सारी बातों को बताने के लिए अगली आयतों में अल्लाह ताला ईमान वालों को कुछ फ़वाद दिखाते हैं कि शायद उनको देख कर लपक आओ, उनको देख कर तुम्हारे टूटे हुए हौसले बुलंद होने लगे। फरमाए इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए। पहले तो लफ्ज़ युद खिलु पे सोच लीजिए आयत को आगे बढ़ने से पहले, कौन करेगा दाखिल, ये अल्लाह फरमा रहा है ना, और अल्लाह से सच्चा कोई है बात में। अल्लाह की ज़ात जब कहती है कि मैं लोगों को उसमें दाखिल करूँगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसके बाद इस बात में हल्का सा भी शक हो सकता है किसी को। अपने दिल को शक से पाक कीजिए कि मेरे रब ने कहा है ना कि मैं दाखिल करूँगा तो वो करेगा। फिर दूसरी बात है किसको करेगा, सिर्फ आमनु को नहीं, आमनु के बाद अमिलुस्सालिहात वाले को, क्योंकि ईमान और अमल ये दो साथ रहने वाले साथी हैं। कहाँ दाखिल करेगा, जन्नात इन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन जन्नात में, उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो मक्का वाले जहाँ पानी भी नहीं मिलता था पीने को, जब उनको ये आयतें मिलती होंगी तो उनके दिल का हाल क्या होगा। हम जैसे लोग जो नेमतों में पलते हैं, उनको अगर ये आयतें समझ आ जाएं तो उनकी दौड़ जो है वो दुनिया से उठ के आखरत की तरफ होने लगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लाह यफअलु मा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह के वादों को सच्चा करवाने के लिए इंसान को ख्वाहिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। किसी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप क्लास में आएंगी, कहने लगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा देखें आप अपना नाम लिखें और कहें कि इंशा, यानी मैं अपना ही ले लेती हूँ, इंशा इफ़त। मैंने कहा कब मैं आऊँगी क्लास में, जब इफ़त चाहेगी। आप कब आएंगी, जब नसरीन चाहेंगी। आप चाहेंगी, अल्लाह तो चाहा हुआ है। अल्लाह ताला तो कुरान में कई सौ साल पहले हमें बता चुका कि लोगों में अपने बंदों के लिए कुफर से राज़ी नहीं हूँ, मैं तो उनको खैर की तरफ बुलाता हूँ। वल्लाहु यदु इला दारुस सलाम, वो तो पुकारता है, लेकिन तुमने अभी अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के साथ मिलाया ही नहीं है। याद रखिए कि जो हमारी चाहत हो जाती है ना, अल्लाह ताला फिर वही आसान कर देता है। फरमाया मन कान यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, और जो शख्स ये ख्याल किए बैठा है कि अल्लाह ताला अपने खबीब की मदद ना करेगा दुनिया में और ना आखरत में, फिर क्या करे। फल यमदुद बिसबबिन इलस्समाई, तो इसको चाहिए कि लटक जाए एक रस्सी के ज़रिए छत से। सुम्मल यक्तफ, फिर अपने गले में फंदा डालकर उसे काट डाले। फल यंजुर हल युस्खिबन न कैदुहु मा यगीद, फिर देखे, फिर गौर करे कि क्या इसकी इस कोशिश ने इसके गम और गुस्से को कम किया। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिम बैयिनात, और इसी तरह हमने उतारा है इस किताब को रोशन दलीलों के साथ। वअन्नल्लाहा यहदी मन युरीद, और बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहता है। इस आयत की शान नज़ूल में दो तरह की बातें हमें मिलती हैं। उसमें से पहली चीज़ ये है कि यहाँ लई यन सुरा हु में हु से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कह सकते हैं कि हु की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जाती है। अहले अरब मुसलमानों की तंगदस्ती और कमज़ोरी को देखते तो ख़्याल क्या करते, लो ऐसे नादार और कमज़ोरों का हम साथ दें, इनके साथ मिलने से हमें क्या मिलेगा। ये चार दिन की चांदनी, ये पता नहीं कहाँ से नबी उठ के आ गया और इसके साथ चार छः गरीब मस्कीन लोग लग गए, हम नहीं इनके साथ जाते। क्यों, ऐसा ना हो कि इनका साथ देने में अहले मक्का के साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, क्योंकि उनके साथ बरस खा बरस की मोहब्बतें भी थी, दोस्तियां थी, और कई मोहब्बत ना भी हो सिर्फ आदत भी होती है, राह रस्म बढ़ाने को ही लोग इखलास समझ लेते हैं। यानी मक्का वालों को अल्लाह के नबी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास नहीं था। उनको लगा कि ये चार दिन पुरानी बात है, एक शख्स ने उठ के नबूवत का दावा किया, फिर चंद लोग उसका साथ देने लग गए। हम इनका साथ क्यों दें और उन लोगों को छोड़ दें जिनके साथ इतने साल के हमारे ताल्लुकात है, ना इनकी मदद होनी है और पता नहीं ये कश्ती चलनी है कि तरनी है कि डूबनी है, लिहाजा हम इनको छोड़ देते हैं और अपनी पुरानी दोस्तियों पर रहते हैं, चाहे वो सिर्फ़ हमें एक रस्म के नाम पे ही ताल्लुक़ मिला हुआ था ख़ानदान का और रिश्तेदारी का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी ये महज़ ग़लत फहमी है, अल्लाह अपने महबूब की मदद करेगा और ज़रूर करेगा, तुम देखोगे कि एक दिन इसी के नाम का डंका बज रहा होगा, इसके कदमों में सोने और चांदी के ढेर लगे होंगे। और जिसको ये बात गवारा नहीं है कि वो इंतज़ार करे थोड़े देर, अभी तो पौधा कच्चा है, अभी तो छोटा है, अभी तो सालन कच्चा है, पका नहीं इसका टेस्ट किसने देखा, अभी तो वो पौधा इतनी कच्ची सी कोंपल की तरह आ रहा है कि हर हवा के हुलारे के साथ फिक्र लग जाती है कि अल्लाह ये पौधा टूट ना जाए का, अगर जिसको नहीं इंतज़ार करना ना, तो फिर जाए अपने गले में रस्सी का फंदा डाले और अपने घर की छत से लटक जाए, फिर इस रस्सी को काट के तड़प तड़प कर मर जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हसद की जो आग इसके दिल में भड़क रही है, इसको फिर दूर करने का यही रास्ता है। पहला मानी तो हम देख चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं की जाएगी तो फिर वो तो अपनी घर की छत पे लटके और मर जाए, यानी इशारा है खुदकुशी की तरफ होगा। एक दूसरा मानी है और वो क्या है कि जो ये चाहता है ना कि अल्लाह अपने नबी की मदद ना करे, तो वो आसमान पे जाए एक रस्सा लेकर, और जो वही का सिलसिला चल रहा है ना, अल्लाह की जो मदद आ रही है, अल्लाह ताला इस नबी की ज़ुबान से जो हक बात निकाल रहा है, जाके उसको ख़त्म कर दे। ये भी मफहूम है, मदद नहीं बल्कि वही को रोक ले। बस लोग हसद महसूस करते थे अल्लाह के नबी से, जेलस फील करते हैं लोग, और याद रखे कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और एक और बात याद रखे कि हसद दुश्मन नहीं करते, दोस्त करते हैं। सबसे बुरा हसद जो है ना, ये दोस्तों का, साथियों का हसद होता है। दो बेस्ट फ्रेंड भी आपस में एक दूसरे पे हसद या रश्त कर रहे होते हैं, तो इस मामले में आता है कि अल्लाह के नबी की खैर को देखकर जब पीछो ताप खाते थे, कुड़ते थे, दिल में पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे प्लान बनाते थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं जाओ फिर तुम अल्लाह के फजल के दरवाजे को बंद कर दो, ना इसकी ज़ुबान से ये वही नाजिल हो, ना ये तुम्हें बताए और ये काम कर दे। और इसी तरह फिर इसका एक मानी लोगों ने ख़ुदकुशी का भी किया है कि जो बंदा ये सोचता है कि मेरी माली परेशानियाँ अल्लाह नहीं दूर कर सकता, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बस कहते हैं कि यन सुरु का मानी यर जुकू है रिस्क दुनिया, तो मतलब क्या है कि जो शख्स फ़क्र व फाका की सख्तियाँ झील रहा है और अल्लाह ताला के फजलो करम से मायूस हो चुका है, वो ये समझता है कि अल्लाह इसे कभी फराख रोज़ी नहीं देगा, ऐसे आदमी के लिए बेहतर है कि वो सिसक सिसक कर जान ना दे बल्कि अभी गले में रस्सा डालकर अपने आप को छत से लटकार कर खुदकुशी कर ले। क्योंकि लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि हमारे पास रोज़ी नहीं है, असल में रोज़ी होती है लेकिन खर्च करना नहीं उनको आ रहा होता। और ये आयत जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक वाकया भी याद आ गया, किसी ने चंद महीने पहले बताया, टीवी में आया है कि पाकिस्तान में गुरबत के हाथों किसी ने खुद को भी मार दिया, बीवी को भी मार दिया और शायद दो बच्चियों को भी मार दिया। तो मुझे यही बात याद आती है कि दुनिया के तो चैन ना आ सका तो वहाँ क्या चैन आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक बात पर जमा दे। आज भी हर उस इंसान के लिए आयत इस रंग में है कि जो ये सोचता है कि सच्चे दीन की अल्लाह मदद नहीं करेगा, खाम खाम अपने रिस्क में क्यों रहे। देखिए दुनिया में एक मारूफ जुमला है, चढ़ते सूरज के पुजारी। जब सूरज चढ़ता है सब पूजने लगते हैं, जब डूबता है तो कोई नहीं पूछता। इसी तरह दुनिया में जिस नाम का डंका बज रहा होता है ना, ना चाहते हुए भी लोग उसकी तरफ अपनी मोहब्बतें ले जाते हैं। बस आप देखिए कि आज तो हम कहते हैं ना हम मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, क्यों? क्योंकि इस्लाम के साथ बहुत सारी शोहरतें मौजूद हैं, इस्लाम के साथ फ़तह बदर मौजूद है, इस्लाम के साथ सुलह हुदैबिया की खूबसूरती मौजूद है, इस्लाम के नाम पे फ़तह मुबीन मौजूद है, मक्का फ़तह हो गया, इस्लाम के नाम पे तबूक की फ़तह मशहूर है, इतने क्रेडिट मिल गए। आज अगर हम इस्लाम का वाले बनते हैं, हाँ इसलिए कि अबू बकर और उमर फ़ारूक का दौर मौजूद है, लेकिन ज़रा लाइए पीछे उस दिन जब हिरा से एक शख्स उतरा और उसने आके लोगों को कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस दिन कितने लोगों को पता था कि ये शख्स जिसको अपने खाने की होश नहीं, ये शख्स जो कई कई दिन के भूख से रहता है, जो जौ खा लेता है, जो भूखा रहता है, जो रोज़े रखता है, जिसको कभी दुनिया की बातें करता नहीं देखा, जिसकी नज़र उठती नहीं देखी, जो ना कभी शादियों में देखा ना रौनकों मेलों में देखा, किसको पता था कि कल ये दुनिया के 100 चुने हुए लोगों में से नंबर 1 पे आ जाएगा, दी हंड्रेड्स में से पहला शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त जिन्होंने अल्लाह के नबी को माना वो शोहरत के नाम पे नहीं आए थे, वो नामों के नाम पे नहीं आए थे। उनको नहीं पता था कल ये शख्स हीरो बनेगा, कल उनको नहीं पता था ये शख्स लीडर बनेगा, लेकिन वो सच्चाई को देख कर आए, उन्होंने हक बात को कबूल किया। इसीलिए तो फिर बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में जमे रहे, फिर वो धमकियां नहीं देते थे। फिर उनका हाल ये नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया, हमारे घर तो वही फाके चल रहे हैं जो इस्लाम पे आने से पहले थे। ऐसे लोग फिर देखे कि जब इस्लाम आया, उसकी फतह हुई, उसका गलबा आया, तो किस तरह चमके। और वो लोग जो अपनी कुफर की मोहब्बतों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते थे कि अबू जहल को छोड़ दें, होगा अबू जहल मानते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, अबू लहब को छोड़ दें, अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दें, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों की खुशफहमी है कि अल्लाह अपने इस नबी की मदद नहीं करेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह शुरू में क्यों नहीं मदद कर देता, क्यों नहीं पहले ही दिन जब इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी की दावत थी, साथ ही फरिश्ता आता, गलियां साफ होती जाती, अल्लाह के नबी के आगे परों के परे पीछे होते फरिश्तों के, और एकदम मक्का में यूं रौनक आती और पता चले जी वाह जी वाह, वो एक शख्स आया और उसके साथ पूरे 1 लाख का लश्कर लग गया जो 10-20 साल के बाद जमा हुआ। हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ? आपको इसकी वजह समझ आती है? तदरीज, फितरत का असूल है। बच्चा भी माँ के पेट में 9 माह रहने के बाद दुनिया में आता है तो उसका बोझ सहारा जाता है। अगर शुरू में इस्लाम को वो गलबा मिल जाता जो उमर फारूक के दौर में मिला था, तो सहाबा की ट्रेनिंग नहीं होनी थी, खरे खोटे का फ़र्क नहीं पता चलना था, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते लोग। आज भी जब किसी का ब्लड प्रेशर आपने लिया हो या लेते देखा हो, पूरा जोर लगा दिया जाता है, ऐसे लगता है कि अब रगें फटने लगेंगी, फिर छोड़ा जाता है, फिर ब्लड का प्रेशर पता चलता है। बंदे के ईमान का प्रेशर भी तब पता चलता है जब कोई एडवर्स कंडीशंस आते हैं ज़िंदगी में, तो आंधियाँ चलती हैं, तब पता चलता है कि कौन सा आम खाया हुआ है अंदर से और इस कच्ची केरी को गिरा देना है, और कौन सा पक्का है कि जिसको दरख्त के साथ पकाना है। अल्लाह सुबहान तआला यहाँ हर एक को पैगाम देते हैं कि मुश्किलात की आंधियों में अपने ईमान को कोसो, अगर तुम गिर पड़े हो दरख्त से तो ये आंधी का कसूर नहीं है, ये दरख्त का भी कसूर नहीं है, वो तो दे रहा है अपनी ख्याल, वो तो अपना फ़ायदा दे रहा है, वो पानी भी पहुँचा रहा है, सूरज को भी बुरा ना कहो, हर बंदा अपनी हस्बे तौफीक खिदमत कर रहा है उस दरख्त को पनपने में, असल तुम खोटे हो, तुम्हारे दिल के अंदर कमी आ गई। और ये चीज़ें जो हैं इंसान को फिर अपना इख्तिसाब करने की दावत देती हैं। वकज़ालिका अन्ज़लना हु आयातिन बय्यिनात, ये खुली खुली निशानी है, क्लियर कट साइंस हैं, पढ़ो समझो खुलो, फिर पता चलेगा कि अल्लाह ने जो दीन दिया, तौहीद, अकीदा क़यामत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, ये सारे रोशन दलाइल हैं, कोई हैंकी पैंकी नहीं है तुम्हारे इस दीन में, लेकिन इसके बावजूद वन अल्लाह यहदी मन युरीद, ये जो मन का लफ्ज़ है ना, आम तौर पे तो यहाँ यही आता है ना कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है, लेकिन अभी जो बात मैंने शुरू में सुनाई कि उस बच्ची को मैंने कहा कि तुम तब आओगी क्लास में जब तुम चाहोगी, तो यहाँ मन की नस्बत अपनी तरफ ले लें। एक हल्का सा बात समझाने के लिए बता रही हूँ कि बेशक अल्लाह हिदायत देता है किसको, मैं युरीद, जो खुद चाहता है, हालांकि यह मफहूम अल्लाह ही का है, लेकिन बात को समझने के लिए कि मैं जो चाहूँगी मेरे साथ वही मामला होगा। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीन अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, बेशक अहले ईमान, यहूदी, सितारा परस्त, ईसाई और आतिश परस्त और मुशरिक, ज़रूर फ़ैसला फ़रमाएगा अल्लाह ताला इन सारे गिरोहों के दरमियान क़्यामत के दिन। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का मुशाहिदा फरमा रहा है, अल्लाह ताला को पता है कौन कहाँ है कैसे है। देखिए कि 6 मज़ाहिब का तस्करा है इधर। आज के दौर में कुछ लोगों ने तफासीर में और किताबों में लिखा कि 10 बड़े मज़ाहिब गुजरे हैं, जिसमें से 6 मज़ाहिब तो इधर ही हैं, 2 इसके अंदर हिंदुइज़्म, बुद्ध मत और जिसको बोलते हैं जैन मत वगैरह, इनके नाम लेके लोगों ने 10 की गिनती पूरी की कि 10 बड़े मज़ाहब जो थे, क़्यामत के दिन पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ठीक है। इससे कुछ लोगों को गलत फहमी हुई, और वो ये कि आज दुनिया में नहीं पता कौन ठीक है। इस आयत को बहुत मिसइंटरप्रेट किया जाता है। सूरत बकरा की आयत 62 की तरह ये आयत भी बास लोगों की गलत समझ की वजह से बिल्कुल गलत तरफ चली जाती है, मुख्तलिफ तरफ चली जाती है कि पता नहीं जी कौन ठीक है, कौन सही है, गलत है, ये तो कयामत के दिन पता चलेगा। तो याद रखिए कि यहाँ ये मतलब नहीं है। फर्स्ट थिंग, इससे मुराद यहाँ क्या है कि अल्लाह को पता है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, आमनू ईमान वाले हैं, यहाँ फिर उसके बाद अमल सवाले नहीं है। खुशफहमी दूर कर दी अल्लाह ताला ने कि जो दुनिया वालों की नज़र में जिस तरह भी है, अल्लाह को सच पता है कहाँ है, क़यामत के दिन दूसरों को भी लग पता जाएगा, ये मुराद है इससे। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं चलता कौन ठीक है, कौन सा मसलक ठीक है, कौन गलत है, कौन ठीक है, क्यों नहीं पता चलता? ना पता चलने वाला ना समझ है, लाशऊर है। मतलब आप देखिए कि एक शख्स है डॉक्टर के पास जाए, उसको कि मुझे पता नहीं मुझे क्या है, कभी यहाँ दर्द है, कभी दिल घबराता है, कभी कुछ। अब उसको तो नहीं वाकई पता क्योंकि वो फर्स्ट ले मैन है, कॉमन पर्सन है। फिर डॉक्टर पूछता अच्छा कहाँ दर्द है, क्या है, अच्छा दिल भी घबराता है, अच्छा सांस भी फूलता है, वो सिम्टम्स देखता है। फिर अपनी मदद करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करवा लेते हैं, फिर बताते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तुम्हारे अंदर फलां चीज़ की कमी है बेशी है, पता चल गया ना। डॉक्टर्स को अपनी तालीम की वजह से फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सिम्टम्स किस बीमारी की हैं, वेरीफाई कराने के लिए टेस्ट करवाते हैं। कई किस्म के टेस्ट हैं दुनिया में आज के दौर में। इसी तरह याद रखिए कि अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन अल्लाह को पता है कि सच्चा मज़हब कौन सा है, लेकिन क़यामत के दिन लोगों को पता चल जाएगा। सबके आमाल, उनके हाल, उनके नज़रियात को अल्लाह ताला खूब जानता है, उसका इल्म कामिल है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद। लेकिन कल क़यामत के दिन फैसले करेगा। यहाँ बहुत बड़ी धमकी भी है कि तुम कहते हो अच्छे काम करते जाओ और अकीदे को छेड़ो ही ना, बस अखलाकियात सिखाओ लोगों को, ये भी गलत है। ठीक है, एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, अकीदे के इश्यूज़ को वजह नज़ा नहीं बनाना चाहिए, इख्तलाफी उमूर को हवा नहीं देनी चाहिए, फ़िरका वारियत को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बंदे को खुद पता होना चाहिए कि ठीक क्या है। फिर बोलती हूँ ये जुमला बड़ा अहम है। लोग कहते हैं हम नहीं अकीदे का इशू छेड़ते, हम सिर्फ बच्चों को अखलाक सिखाते हैं। मान लीजिए ठीक है, लेकिन आपको खुद पता है कि नहीं आपका अकीदा क्या है? आप दूसरों को मत छेड़ें, अपना तो चेक करें। किसी से बात हुई, उन्होंने कहा आप बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे कि बशर थे? तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं छेड़ता, मुझे तो ये पता है जो वो कह गए हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जो वो कह गए आप अमल करें, चाहे वो नूरी नबी हो या बशरी नबी हो, ठीक है, ये अपनी जगह, वेरी गुड, 110%। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह नूर थे कि बशर थे। आप इस मसले को एक्सप्लॉयट ना करें, लेकिन अपने अकीदे को तो ठीक रखें। जब हम खुद भी गुमगु का शिकार हैं, मसलन पूरा कुरान हम पढ़ने के करीब आ जाएं और हमें यही ना पता चले कि वाकई अल्लाह एक है और आसमान पे है, पता नहीं शायद अल्लाह अंदर भी है बाहर भी है, और शायद नबी सल्लम आज भी ज़िंदा ही हो, इन गलियों में फिर रहे हो, क्या पढ़ा आपने? चूँ चूँ का मरबा कर दिया आपने? इस तरह का गुड़मुड़ दीन अमल में नहीं आगे आने देता। अब अल्लाह ताला इस बात की दलील में अगली आयत में जो आयत सजदा भी है बयान फरमाते हैं, अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्थ, क्या तुम मुलाहिजा नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला ही को सजदा कर रही है हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है, व शम्स वल कमर और सूरज और चाँद, व नजूम वल जिबाल सितारे और पहाड़, व शजर व दवाब दरख्त और चौपाए, व कसीर मिनन्नास और बहुत सारे लोग भी। पिछली सारी मखलूकात की बात हुई तो सारे इंसानों की बात हुई, तो लफ्ज़ बोला कसीर के सारे नहीं करते, इंसान के अलावा सारी बाकी मखलूकात 100% अल्लाह ताला के आगे झुकती हैं। समय न वाताना तवन व करहन, लेकिन इंसानों में अक्सर सजदा करते हैं, सारे नहीं करते। व कसीर उन हक का अलैहिल अज़ाब, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर अज़ाब का फ़ैसला चिस्पा हो गया, हो गई बात, यानी ऐसे लगता है जैसे स्टैम्प्ड हो गए, अज़ाब की बात डिक्लेयर हो गई। वमई युहिन अल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, और देखो जिसको अल्लाह जलील कर दे तो उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, क्योंकि इन अल्लाह यफअलु मा यशा, बिला शुबा अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, इस आयत में सजदा है पहली बात है, इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, जो भी करना चाहे फ़र्ज़ नहीं है लेकिन किया जाए तो बहुत अजर है, इस पे पीछे बात हो चुकी है। अब यहाँ देखें कि कायनात की बहुत सारी चीज़ों के सजदे की यहाँ बात हुई ना, बताया क्या जा रहा है, पिछले सारे मज़ाहिब अपने नाम के एतबार से कोई भी काम करें, अगर उनका अल्लाह सुबहाना ताला के साथ मामला ठीक नहीं, आजजी का मामला नहीं, अल्लाह ताला की अज़मत उसकी किब्रियाई को वो नहीं मानते, तो फिर समझें कि उनका नाम उनको फ़ायदा नहीं देगा, चाहे वो आमनू का नाम क्यों ना लें। फिर इस आयत को पढ़ते सुनते हुए वाकई ऐसे लगता है कि सारी कायनात अल्लाह ताला के आगे झुकी हुई है। सूरत बनी इसराइल में भी हम पढ़ चुके कि वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, आप भी दिल के साथ सुनिएगा, मैंने इसको ज़िक्र इलाही एक किताब में भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी और सही सनद के साथ है। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है, ए फलां पहाड़ क्या आज तेरे हाँ किसी ऐसे बंदे का गुज़र हुआ जो याद इलाही में मशगूल था। एक पहाड़ दूसरे से पूछता है, अगर मैंने इसको बड़ी सही सनद से ना पढ़ा होता है, याद ही अधूरी रिवायत है, पूरी आपको किसी और मौके पे कोट करवाऊंगी, कि पहाड़ आपस में बातें करते हैं, आज तुझ पे कोई जाकिर आया, कोई आबिद आया तेरे ऊपर, कोई सजदे करने वाला आया तेरे ऊपर, तो इससे क्या पता चलता है कि हर चीज़ के अंदर सेंस है। फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं मक्का के उस पहाड़ को जानता हूँ सबीर नाम का, स्वाद बा यारा, कि जो नबूवत से पहले मुझको सलाम किया करता था। तो क्या पता चलता है कि इन चीज़ों में भी हिस है लेकिन हम उनकी बात नहीं समझते। और हम ज़रा अपने सजदों का भी हाल समझ लें, हमारी सजदों की कैफियत किस किस्म की है, कहाँ हम मामला करते हैं।